Iran Radio Podcast। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। यूरोप में सदियों तक शासन पर चर्च का दबदबा रहा। पोप के आदेश के मुताबिक राजा शादी करता था और पोप के कहने पर अपनी पत्नी से जुदा हो जाता था और पोप के फरमान से राजा को प्रजा बना दिया जाता था। अगर कोई राजा पोप का हुक्म मानने से इनकार करता था तो जल्द ही उसे पछताना पड़ता था। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 11वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। सैकड़ों साल पहले, इससे पहले कि यूरोपीय जहाज नए महाद्वीपों के तटों पर लंगर डालते, यूरोपीय शासक खुद को पोप का अनुसरण करता और दोस्त बताने के लिए मजबूर थे। इसीलिए वो अपने हर काम को मजहबी रंग दे देते थे। दूसरे महाद्वीपों पर हमले और नए इलाकों पर कब्जे के लिए उनका दावा था कि वो इस तरह से ईसाई धर्म का विस्तार और प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए जब अफ्रीकी और अमरीकी बंदरगाहों पर यूरोपीय जहाज़ों ने लंगर डाला तो उन जहाज़ों पर ईसाई धर्मगुरु भी मौजूद थे। जहां यूरोपीय सैनिक और व्यापारी लूट मार करते थे, वहीं ईसाई धर्मगुरु लोगों को ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाते थे। स्थानीय लोग जब ईसाई बन जाते थे तो वे ईसाई शासकों और धर्मगुरुओं का सम्मान करने के लिए मजबूर होते थे। इस तरह से बगावत की संभावना काफ़ी कम हो जाती थी। इसी तरह से वे अपने स्थानीय संस्कृति से दूर होते जाते थे और यूरोपीय उत्पादों के उपभोक्ता बन जाते थे। जब यूरोपीय नाविकों ने समुद्र में अपने जहाज उतारे और नए इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया तो ईसाई धर्म गुरुओं ने उनका साहस बढ़ाया। 16वीं शताब्दी में जब अमेरिका पर धीरे धीरे यूरोप ने शिकंजा कसना शुरू किया तो उस समय कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक नेतृत्व पोप जूलियस द्वितीय के हाथ में था। प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकल एंजेलो ने पोप की एक बड़ी मूर्ति बनाने का फैसला किया जो उनकी वास्तविक आकृति से 3 गुना बड़ी थी। जब मूर्ति का मिट्टी का मॉडल तैयार हो गया तो जूलियस उसे देखने गए। माइकल एंजेलो ने उनसे पूछा, हम मूर्ति के बाएं हाथ में एक किताब कैसे रख सकते हैं? पोप एक पल के लिए रुके, मुजस्मे की तरफ देखा और कहा, उसके हाथ में तलवार दे दो, मैं किताब और कलम लेकर क्या करूँगा? इटली के बोलोगना शहर के केंद्रीय चौराहे पर तलवार हाथ में पकड़े हुए पोप की कांसे की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। ये एक ऐसा नज़ारा था जो लोगों के लिए बेहद अजीब था, क्योंकि उन्होंने हमेशा पादरियों को अहिंसा का उपदेश देते और प्रेमपूर्ण दयालुता और सहिष्णुता का आह्वान करते हुए देखा था। लेकिन अब वे क्रोधित चेहरे और नंगी तलवार के साथ पोप की मूर्ति देख रहे थे। तब से लोग जूलियस को योद्धा पोप कहने लगे और कई लोग उन्हें डरावना पोप भी कहने लगे। चर्च द्वारा नए इलाकों पर कब्जे का समर्थन सिर्फ धन और ज़मीन के लिए नहीं था, बल्कि चर्च इस तरह से दुनिया में ईसाई धर्म के विस्तार का भी प्रयास कर रहा था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस कैरेबियाई द्वीपों में से एक पर पहुंचे तो उन्होंने स्पेन के राजा को लिखा, मुझे लगता है कि मूल निवासियों का ईसा मसीह के पवित्र धर्म की ओर मार्गदर्शन करने और स्पेन को धन और विशाल भूमि प्रदान करने के लिए बहुत कम समय लगेगा। इस विशाल इलाके पर महामहिम का अधिकार हो जाएगा और यहाँ ईसाई धर्म खूब फलेगा और फूलेगा। लगभग 30 साल बाद मैगलन ने प्रशांत महासागर को पार करने और मुसलमानों के इलाके पर कब्जा करने में सफलता हासिल कर ली। जब स्पेनिशों ने फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर कब्जा कर लिया, जहाँ के अधिकांश निवासी मुस्लिम थे, तो उन्होंने इस द्वीप में इस्लाम के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने और लोगों को ईसाई धर्म के लिए आमंत्रित करने का बेहद प्रयास किया। 1578 में फिलीपींस के स्पेनिश गवर्नर ने मिंडानाओ के स्थानीय शासक को लिखा, अब से आपको इस्लाम के प्रचारकों को स्वीकार करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये धर्म झूठा है और ईसाई धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सच्चा है। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि मोहम्मद के धर्म का प्रचार कौन कर रहा है और उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ। तुम्हें उन घरों को नष्ट कर देना चाहिए और जला देना चाहिए जहां इस धर्म का प्रचार किया जाता है। गुलामों की तिजारत में रौनक के साथ ही स्पेनिश ईसाइयों को नए इलाकों में ईसाई धर्म फैलाने के लिए एक नया हथकंडा मिल गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो स्थानीय लोग ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। स्पेनिशों के फिलीपींस में प्रवेश करने से करीब 800 साल पहले मुस्लिम यात्रियों और व्यापारियों ने, कि जिनमें अरब, भारतीय और ईरानी शामिल थे, अपने व्यवहार और नैतिकता से इस इलाके के लोगों को प्रभावित किया और उन्हें मुसलमान बनाया। लेकिन क्रूसेड का कड़वा अनुभव रखने वाले स्पेनिशों का जब फिलीपींस में स्थानीय मुसलमानों से सामना हुआ, तो उन्होंने उन्हें बहुत परेशान किया। वहाँ के मूल निवासियों के साथ मैगलन की लड़ाई को 44 साल बीत चुके थे जब स्पेनिश सेना ने फिर से इस भूमि पर कदम रखा। जब ये आक्रमणकारी आए तो मुसलमानों के पास मजबूत सामाजिक और आर्थिक संगठन था, लेकिन स्पेनिश सेना नदी का उपयोग करके मुस्लिम क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश कर गई। उसने मुसलमानों को गंभीर उत्पीड़न का शिकार बनाया और उनकी महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया। मुसलमानों ने खून की आखिरी बूंद तक संघर्ष किया, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद मनीला क्षेत्र के मुस्लिम शासक किंग सुलेमान की हत्या कर दी गई और उनके शासन का पतन हो गया। उसके बाद स्पेनिशों ने मनीला शहर को स्पेनिश औपनिवेशिक शासन का केंद्र बना दिया। मनीला का पतन एक महान युद्ध की शुरुआत थी जो एक सदी तक जारी रहा। हालांकि वे कभी भी मिंडानाओ और सुलु के द्वीपों में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हुए, जो मुसलमानों के गढ़ थे। नाविकों के साथ नए इलाकों में जाने वाले पादरियों का लोगों को ईसाई धर्म में आमंत्रित करने के अलावा एक और मिशन था। वो मिशन ये था कि वे आक्रमणकारी सैनिकों के हिंसक व्यवहार को उचित ठहराते थे और मूल निवासियों को बिना किसी विरोध और प्रतिरोध के अत्याचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास करते थे। स्पेनिश पुजारी फ्रांसिस कोडाविला को फ्रेंचो भाषा या पेरू के रेड इंडियंस की मूल भाषा सीखने पर गर्व था, क्योंकि उनका मानना था कि इस भाषा की मदद से उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। वो स्थानीय लोगों की तुलना दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों में पाए जाने वाली एक प्रजाति लामा से करते हैं। वो अपना परिचय लामाओं के चरवाहे के रूप में कराते हैं। वो कहा करते थे कि मैं छोटे लामाओं का दयालु चरवाहा हूँ, बड़े दिल वाला एक चरवाहा जिसे लामाओं के लिए मौत का कोई डर नहीं है। मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने जानवरों को जानता है। इसके बाद कोडाविला ने यूरोपीय लोगों के आगमन के बाद स्थानीय लोगों पर होने वाली सभी यातनाओं और हत्याओं का कारण बताया। उनके अनुसार ये सभी घटनाएं उन पापों के कारण थी जो उन्होंने इससे पहले किए थे, और स्पेनिशों ने उन्हें केवल उनके पापों की सजा दी है। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन्हें उनकी पिछली गलतियों के कारण सजा देता है। ईश्वर ने ये काम यूं ही नहीं किया है, बल्कि गोरे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। वे इसी प्रयोजन से यहाँ आए हैं। ईश्वर की इबादत नहीं करने और पापों के कारण रेड इंडियंस नरक में जाएंगे। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस का ईसाईकरण भी बलपूर्वक और सामूहिक रूप से किया गया था। अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों के आगमन के लगभग 12 वर्षों के दौरान लगभग 10 लाख रेड इंडियंस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। 1536 तक यानी 30 साल से भी कम समय में ये संख्या 9 मिलियन तक पहुंच गई। स्पेनिश पादरियों में से एक ने अपने स्मरण में लिखा है कि अपने एक सहयोगी की मदद से उसने हर दिन लगभग 14,000 लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करवाया। लेकिन सबसे अधिक संख्या में लीमा के बिशप ट्रिब्यू रोबल्स ने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। उन्होंने अकेले 8 लाख से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाया। जब फ्रांसीसी प्राचीन और सपनों की सरजमीन की तलाश में उत्तरी अमेरिका पहुंचे तो फादर मार्कवेट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने स्पेनिशों की तुलना में रेड इंडियंस के साथ अधिक विनम्रतापूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने बिना हिंसा का सहारा लिए उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी अदालत ने कुछ नए कानून स्थापित किए, रेड इंडियंस को ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इनमें से एक कानून के अनुसार फ्रांसीसियों का धर्म स्वीकार करने वाले प्रत्येक रेड इंडियन को फ्रांसीसी नागरिक माना जाएगा। हालांकि इन रेड इंडियंस को कभी भी गोरे लोगों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए। अंग्रेजों ने स्पेनिशों की तरह रेड इंडियंस का धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंसा और बल का प्रयोग किया। रेड इंडियंस की भूमि को जोतने के लिए अंग्रेज पादरी बाइबल के कुछ हिस्सों का हवाला देते थे। मुझसे संपर्क करो, मैं काफिरों को माफ कर दूंगा और मैं दुनिया को तुम्हारा बना दूंगा। उनके अनुसार ये काफिर रेड इंडियंस थे, इसलिए ईश्वर ने उनकी संपत्ति ईसाइयों को दे दी। अंग्रेज पादरियों ने रेड इंडियंस को दबाने के लिए बाइबल की अन्य आयतों का भी इस्तेमाल किया। जो कोई शासक के आदेश का पालन नहीं करता वो ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करता है, और जो ऐसा उल्लंघन करता है उसे श्राप दिया जाएगा। अंग्रेज खुद को स्थानीय लोगों की भूमियों का मालिक करार देते थे, इसलिए जिन रेड इंडियंस ने उनका विरोध किया उन्हें बाइबल के अनुसार ईश्वर द्वारा सजा दी गई। जब रेड इंडियंस को गुलामी के लिए मजबूर किया गया या उन्हें उनकी चरागाहों से निकाल दिया गया और सामूहिक रूप से उनका नरसंहार किया गया, तो अंग्रेज पादरियों ने इन सभी घटनाओं को ईश्वर के श्राप से जोड़ दिया। मिशनरियों में ऐसे पादरी भी थे जो मानवता और दयालुता के साथ केवल मूल निवासियों को ईसा मसीह की शिक्षाएं सिखाने का प्रयास करते थे। इन मिशनरियों ने सैनिकों से मूल निवासियों की रक्षा की, हालांकि सैनिकों ने उन्हें कैद किया और प्रताड़ित भी किया। 1602 में स्पेनिश मिशनरियों का एक समूह अमेजन जंगल के एक सुदूर इलाके में पहुंचा। इन मिशनरियों ने खतरनाक झरनों के किनारे एक बस्ती बसाई जहां गोरों को ठहरने या वहां रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उन्होंने स्पेन के राजा फिलिप थर्ड को एक पत्र लिखा जिसमें अनुरोध किया गया कि मिशनरियों के अलावा किसी भी गोरे को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। फिलिप ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इन पादरियों ने दावा किया कि इस क्षेत्र में लगभग 2 लाख रेड इंडियंस रहते हैं जिनका व्यवहार बच्चों जैसा और दयालु है, और वे मसीहा की पुकार सुनने के लिए हर तरह से तैयार हैं। पहले चरण में मिशनरियों ने रेड इंडियंस की भाषा सीखी और कभी भी रेड इंडियंस को स्पेनिश या पुर्तगाली सिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने विशेष रूप से उन्हें उपनिवेशवादियों के शिविरों में जाने से रोका। अगले चरण में उन्होंने उनके पास उपलब्ध औषधियों से रेड इंडियंस की बीमारियों का इलाज किया। उन्होंने विभिन्न समूहों के बीच होने वाले युद्धों और शत्रुता को समाप्त करा दिया, और इस दौरान वे उन्हें ईसा मसीह की कहानी सुनाकर एक दूसरे को सहन करने और एक दूसरे का भला करने के लिए आमंत्रित करते रहे। पादरी यूरोपीय उत्पाद बनाने में रेड इंडियंस की अनोखी प्रतिभा से आश्चर्यचकित थे। वे नाजुक फीते, संगीत वाद्य यंत्र और यहाँ तक कि जटिल घड़ियाँ भी अच्छी तरह से बना सकते थे। युवाओं को अपनी पसंदीदा नौकरी चुनने की अनुमति दी गई, लेकिन सभी को प्रतिदिन 8 घंटे काम करना पड़ता था। इस समुदाय का प्रबंधन लगभग 150 धार्मिक मिशनरियों द्वारा किया जाता था, जिनमें से कुछ डॉक्टर, शिक्षक और विभिन्न व्यवसाय वाले थे। रेड इंडियंस को आवश्यक प्रावधान और उपकरण दिए गए थे। जब इस छोटे और शांतिपूर्ण समाज के गठन की खबर यूरोप तक पहुंची तो कई लेखकों और वैज्ञानिकों ने इसकी प्रशंसा की। इनमें से एक वैज्ञानिक ने इस अनुभव को मानवता की जीत करार दिया, लेकिन ये शांति थोड़े समय के लिए ही थी। अब धीरे धीरे स्पेन के व्यापारी उनसे ईर्ष्या करने लगे और दास व्यापारियों ने मूल निवासियों पर हमले शुरू कर दिए। मिशनरी इस खानाबदोश बस्ती के उन हिस्सों को खाली कर दिया करते थे जो गुलामों का शिकार करने वालों की पहुंच में थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने फिर भी हार नहीं मानी। उसी समय स्पेन और पुर्तगाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार पुर्तगाल स्पेन को आज के ब्राज़ील में एक क्षेत्र देगा और बदले में वो उन ज़मीनों पर कब्जा कर लेगा जहाँ मिशनरी खानाबदोश रहते थे। पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और मिशनरियों और रेड इंडियंस से कहा गया कि उनके पास इस क्षेत्र को खाली करने के लिए सिर्फ एक महीने का समय है। पुर्तगालियों को ये बताया गया कि इस क्षेत्र में सोना मौजूद है और रेड इंडियंस इसका खनन कर रहे हैं और मिशनरी इसका भंडारण करते हैं। एक व्यक्ति को छोड़कर धार्मिक मिशनरियों ने पुर्तगालियों के आदेश का पालन किया और क्षेत्र छोड़ दिया, लेकिन रेड इंडियंस अपनी भूमि छोड़ने के लिए तैयार न हुए। उन्होंने पुर्तगाली आक्रमणकारियों का विरोध करना शुरू कर दिया। रेड इंडियंस का संघर्ष 5 साल जारी रहा, तब तक जब तक कि पुर्तगाली कुछ बड़ी तोपों को जंगल के अंदर ले जाने में सफल नहीं हो गए और रेड इंडियंस को तोपों के गोलों से उड़ाना शुरू नहीं कर दिया। सैकड़ों मूल निवासी मारे गए और बाकी जंगल में भाग गए।